उन तस्वीरों को देखकर आरवी के होश उड़ गए, आंखों में आंसू भर आए, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो धम्म सी सोफे पर गिर गई। भरी आंखों से वो उन तस्वीरों को देखने लगी। उसके बाद विहान की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया ताकि याद कर सके कि आखिर फेयरवेल वाले दिन हुआ क्या था। धीरे धीरे उसको सब याद आया। कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें भी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसके बेहोश होने तक की सब बातें याद आ गईं, पर उसके बाद क्या हुआ ये दिमाग पर जोर डालने पर भी याद नहीं आया। पर उसको इतना याद आ गया था कि वो खुद नहीं गई थी। वो कुछ देर तक गहराई से उस दिन जो हुआ उसके बारे में सोचती रही। सब कड़ियों को जोड़ने के बाद उसके दिमाग में जो बात कौन थी, एक बार फिर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और गुस्से से चीखने लगी, झूठ, सब झूठ कहा तुमने। मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास। उस शाम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो वॉशरूम जा रही थी, पर तुमने मुझे पकड़कर उस रूम में खींच लिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, पर तुमने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। सही कहा तुमने, उस दिन मैंने ही ड्रिंक में नशे की दवाई डालकर उस लड़की के जरिए उसे तुम तक पहुंचाया था। और जब तुम वॉशरूम जाने के लिए ऑडी से बाहर निकली तो मैंने ही नीचे वाले फ्लोन वाले वॉशरूम पर मेंटेनेंस का बोर्ड लगवा दिया था और उसके बाद तुम ऊपर आ गई जहां मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, नीचे के फ्लोर पर स्टूडेंट्स आ जा रहे थे, वहां कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए मैंने सब इंतजाम किया और तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पर बुला लिया। तुम आ भी गई और मेरा काम आसान हो गया। मैंने ही तुम्हें उस खाली रूम में खींचा था। नशे में थी तुम, फिर भी काबू में नहीं आ रही थी, पर जब तुम्हारे सर पर चोट लगी उसके बाद तुम एकदम शांत हो गई थी। और उसके बाद हमारे बीच क्या हुआ ये बताने के लिए तो ये तस्वीरें ही काफ़ी हैं जिन्हें खास तुम्हारे लिए निकाला गया है, क्योंकि ऐसे तो तुम मेरी बात मानती नहीं, तो हमारे बीच जो हुआ उसका सबूत तो होना चाहिए था ना। उसकी बात सुनकर आरवी सुन पड़ गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करे या क्या कहे। विहान ने उसको फंसाने के लिए पूरा प्लान बनाया था और वो उसके जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो स्तब्ध सी उन तस्वीरों को देखने लगी। तभी एक बार फिर उसके कानों में विहान की आवाज़ पड़ी, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि तुम खुद मेरी बाहों में आई थी या मैंने तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि मैं तुम्हें चख चुका हूँ और अब तुम जूठन हो मेरी। अब तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, रेप किया है तुम्हारा और तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, पुलिस कंप्लेन करोगी मेरे खिलाफ। तो मैं तुम्हें पहले ही एक बात बता देता हूँ स्वीटहार्ट, अगर तुम पुलिस में जाकर और दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर भी ये कहोगी ना कि तुमने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, मैंने तुम्हारा रेप किया है, तब भी कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। और जो सबूत मेरे पास है उनसे ये साबित हो जाएगा कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ थीं। दुनिया तो वही देखेगी जो मैं उन्हें दिखाऊंगा, वही सुनेगी जो मैं कहूंगा। तुम्हारी सच्चाई मेरे झूठ के नीचे दबकर दम तोड़ देगी। हर हाल में तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी, वो भी सारी दुनिया के सामने। उसके बाद हर नज़र तुम्हें गुनाहगार की तरह देखेगी। हर इंसान तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएगा। बाजारू लड़की बनकर रह जाओगी तुम। और सोचो अगर इसके बाद मैं ये झूठ और बोल दूं कि तुमने मेरे साथ एक शाम गुजारने के पैसे लिए हैं, तो क्या इमेज बनेगी तुम्हारी दुनिया के सामने? फिर तो तुम्हारे घर के आगे ऐसे लोगों की भीड़ लग जाएगी जो तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी जवानी को चखने की ख्वाहिश रखते होंगे। किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी तुम, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। विहान की बातें सुनकर आरवी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बेबसी थी कि वो पलटकर कुछ कह तक नहीं पा रही थी। विहान ने अब अपना अगला पासा फेंकने की सोची और आगे बोला, तुम्हारी छोड़ो, अपनी माँ के बारे में सोचो। अगर ये सब बाहर आ गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? बेचारी अपनी बेटी की इस बेशर्मी को देखकर जीते जी मर जाएगी या फिर खुद ही अपनी जान ले लेगी। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो ये जो दुनिया है ना, बड़ी ही कुत्ती है। वो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जीना हराम कर देगी। अगर तुम अपनी इज्जत और अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मेरी बात मान लो। अगर तुमने शांति से मेरी बात मानी तो मैं इस राज को कभी बाहर नहीं आने दूंगा। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? विहान की बातें सुनकर आरवी नफरत से उसको घूरने लगी। विहान ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं उस शाम को भूल जाऊंगा, अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजकर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अगर तुम सीधे तरीके से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, मेरे प्रपोजल के बारे में अच्छे से सोच लो। अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार हो जाती हो तो एक इज्जत भरी जिंदगी बिता सकती हो, और अगर नहीं मानती हो तो तैयार रहना, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता। तुम्हारा कॉल अगर कल सुबह तक नहीं आया या तुमने शादी से इनकार किया तो कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम्हारे एक्सक्लूसिव फोटोज जो अभी तुम्हारे हाथ में हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी और उसके बाद तुम अपनी इज्जत आबरू और अपनी माँ सबसे हाथ धो बैठोगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी उस दोस्त को या किसी और को हमारे बीच की बात बताने की कोशिश भी की तो याद रखना मुझे तुम्हारी इज्जत का सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे और तेरी माँ को। वैसे भी वो बेचारी अकेली है, तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी उन्हें। सोचो अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी अपने जिस्म का धंधा करती है तो क्या बीतेगी उन पर। अगर वो नहीं भी मानती है तब भी दुनिया की घटिया बातें और ताने वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। फैसला तुम्हारा है, या तो मेरी बात मानकर इज्जत के साथ मेरी पत्नी बनकर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह दिखा सको। तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। अब तुम जा सकती हो यहां से। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और उस कमरे से बाहर निकल गया। आरवी की आंखें छलक आईं। कुछ देर सुनसी वहीं बैठी रही, फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा, उन तस्वीरों को वापस लिफाफे में डाला और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बाहर खड़े लोग और वेटर उसकी हीन निगाहों से देखने लगे। उनकी नजरें ही उसे असहज कर गईं। उसने अपने दुपट्टे से उस लिफाफे को ढक लिया और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए तेज कदमों से वहां से निकल गई। टू बी कंटिन्यूड।